महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 19 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम चित्तात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का ये 6 नंबर का खंड है। उसमें प्रथम प्रकृति बंध अधिकार है और ये पहली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 81 पर हम आ गए। 81 कल का कुछ विशेष विषय आपको नहीं समझा, कहाँ से कहे थे?
नहीं, अच्छा,
देखो पहले मैं फिर से देखिए, हमारी अंतर की प्ररूपना चल रही थी। अंतर में क्या देखा हमने? 79 पेज पर ओग से नीला नीचे 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण, 7 असाता वेदनिया, 4 संजोलन, पुरुष वेद, हास्यरति अरति शोक, भय जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस कारमान, समचतुर संस्थान, वर्ण चतुष्क, अगरु लघु 4, प्रशस्त व्यागति त्रस 4, स्थिरादि 2, सुभग सुसुरादि निर्माण तीर्थंकर 5 अंतराय। तो उसका अंतर अभी देखना है। तो मिनिमम एक समय और मैक्सिमम अंतर्मूर्त, ये ज्ञानावरण आदि के यानी अलग अलग उसको डिराइव करना है। ज्ञानावरण के लिए तो जैसे 11वें गुणस्थान का जो काल है, एक समय से अंतर्मूर्त उसको लेना, और जहां जिसकी प्रतिपक्ष की अपेक्षा से भी एक समय से अंतर्मूर्त तो घटित होता ही होता है। पंचेन्द्रिय पुरुषवेद उसका काल लंबा है, परंतु अंतर में वो अंतर्मूर्त से ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा उसमें। फिर विशेषता क्या थी? निद्रा प्रचला में जगन्य और उत्कृष्ट अंतर भी अंतर्मूर्त, यानी वो निद्रा पचला की बंधे विच्छित्ति के बाद अंतर्मूर्त से ही मरण हो सकता है, उसके पहले नहीं, ये उसका अर्थ हुआ। स्थान ग्रुद्धित्रिक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का, उसका अंतर कैसे? जब सम्यक दृष्टि हुआ तब अंतर पड़ा और वापस दूसरे में पहले में आ गया। तो कहते उसका अंतर होता है मिनिमम अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट कुछ कम 2 छासठ सागर। ये तो समझ में आते हुए इसे पे। अब आपका प्रश्न था,
तो यहाँ से कल से आया मुझे तो उसने आया ही नहीं था।
हाँ,
और ये 78 पेज पे जो
78 पर, हाँ अच्छा, जो काल की बात आप पूछ रहे हैं, ठीक है, काल की बात आपका प्रश्न है, काल संबंधी आहार मार्गणा अनाहारकों में काल समझना है। तो अनाहारक कब होते हैं? विग्रह गति में होते हैं, और कब होते हैं? केवली समुदाय में होते हैं। कितना समय है? 3 समय। 14वें गुणस्थान का अनारक अंतर्मूर्त है, तो वहां कोई बंध ही नहीं है, तो वहां सवाल ही नहीं। हमको बंध का काल चाहिए, कारमाण कायोग में बंध का काल। अब उसमें उन्होंने कारमाण कायोग में देवगति चतुष्कर तीर्थंकर का बंध कौन करेगा? तीर्थंकर की प्रकृति वाला जो समय दृष्टि के साथ कारमाण कायोग में आया हुआ है, तो कहते उसका बंधकाल कितना होगा? 1 या 2 समय ही हो सकता है, क्योंकि वो 2 मोड़ से ज्यादा नहीं लेता। अन्य जो सूक्ष्म जीव भी जिस प्रकृति को बांधते हैं उसका मिनिमम काल 1 समय, मैक्सिमम काल 3 समय, क्योंकि 3 मोड़े हर जीव लेगा ऐसा नहीं, परंतु ले सकता है उस अपेक्षा से। यहां तक समझ में आई बात? पर वो 3 मोड़ वाले जो है कारमाण का युग में, तो एक्चुअली किसी को भी नरक गति गत्यानुभव वगैरह तो बनती नहीं, आयु बनती नहीं, तो यहाँ बंधने वाली देवगति बंधेगी वो समय दृष्टि को बंधेगी। हाँ, तीन समय वाले को तो नहीं बनेगी, किसी को देवगति बनती है, पर वो कौन सा होना चाहिए? कारमान का युग में सम्य दृष्टि जो मनुष्य तीर्यंच है, और उसको एक या दो मोड़ लगेंगे, ज्यादा नहीं। इस तरह से उसका हमने बंद काल देखा था, वो तो काल था, अब यहाँ अंतर देख रहे थे। तो अंतर में हमने बहुत सारी प्रकृति देखी जिसका, देखो ये पुरुष वेद को ही लिया, नपुसक वेद को क्यों नहीं लिया? क्योंकि नपुसक वेद के बंध का अंतर जो सम्यक्त्व में रहने का काल, सम्यक्त्व में कहो या तीसरा लेकर चौथे में ले लो, दो छासर सागर, या जहाँ नपुसक वेद नहीं बनता है, जैसे भोगभूमि में नहीं बनता है, तो वो तीन पल्ले और दो छासर सागर, इस तरह से हम उसको देख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। देखो 80 पेज पर देख लेते हैं। अभी तो हमने वो ज्ञानावरणादि देखे, स्थान वृद्धि आदि देखे, उन्होंने इसको समझा है, उसके बाद छोड़ दो। प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान वरण की बात है, तो देखो अप्रत्याख्यान वरण का बंधक पहले से चौथे गुणस्थान तक है, उसका अंतर कब कब पड़ेगा? जब वो पांचवें में जाएगा, छठे सातवें में जाएगा, तो चौथे गुणस्थान तक बंधने वाली का अंतर पड़ेगा। तो पांचवें गुणस्थान में मिनिमम कितना रहता है, मैक्सिमम कितना रहता है? मिनिमम अंतर्मुहूर्त, और मैक्सिमम कुछ कम पूर्व कोटि। बाद में वो पांचवें में ही मरा और देव में गया, तो चौथे में आया, तो अप्रत्याखंड का बंधन शुरू हुआ। ये तो ये सम्मूर्छन तीर्यंच में, इसको हम अप्रत्याख्यान का उत्कृष्ट अंतर, सम्मूर्छन तीर्यंच जो पर्याप्त होते ही, सादी मिथ्या दृष्टि है और पर्याप्त होते ही सम्यक तो प्राप्त करता है, उसकी अपेक्षा से लेना। प्रत्याख्यानावरण के लिए क्या करना, 8 साल के बाद वो संयम धारण किया, तब उसका प्रत्याख्यानावरण का अंतर चालू हो गया, यानी बंध रुका, वो संयम ही मरकर देह में जाएंगे तो बंध चालू होगा।
तो
कुछ कम पूर्व कोटि कथन तो दोनों का समान है, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा, पर ये कुछ कम का प्रपोर्शन हमको मालूम होना चाहिए। अब यहां तक तो हमारे कल का विषय हुआ था, हम 81 पेज पर आए, पहली लाइन से हमको पढ़ना है आज। स्त्री वेद का अंतर, स्त्री वेद के बंध का अंतर ये कहते हैं। ऐसे तो एक समय का अंतर पड़ सकता है, तो जघन्य से एक समय, तो स्त्री वेद का बंध कब नहीं होगा, तीसरे में या ऊपर में रहेगा, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छित्ति है। तो उत्कृष्ट कुछ अधिक 132 सागर, 266 सागर, नहीं तीसरे, और देखो पहले तो ऊपर समय दृष्टि रहा, क्योंकि 66 सागर लेना है तो कभी संयमी भी हुआ है, कभी पांचवें में आया, कभी चौथे में भी गया है, तभी तो 66 सागर पूरे घटित होते हैं, नहीं तो 42 सागर ही होते हैं अगर चौथे पांचवें वाला होगा, अकेले चौथे वाला होगा तो साधिक 33 सागर ही हो सकता है। तो यानी वो 66 सागर में अंतर्मुहूर्त कम था, तब तीसरे में आया, श्रीवेद का तो बंद नहीं हुआ, फिर 66 सागर सम्यक्त, फिर अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में आया, हमको अंतर घटित करना, इसलिए फिर उसको मिथ्यात्व में लाके बंद कराना है। क्या क्या स्त्रीवेद का? क्योंकि देखो सम्यक तो प्राप्त करने के पहले प्रायोगिक लब्धि में स्त्रीवेद का बंध रुक जाएगा, और सम्यक में से आने पर हम कहते हैं ना हमको मैक्सिमम अंतर लेना है, तो आने पर उसने कुछ कोई भी बंध कर सकता है, तो उसने पहले शुरुआत में पेज नंबर 81 देखो। देखो हमने क्या देखा, प्रायोगिक लब्धि के 34 बंधापसरण स्थान याद है आपको, तो उसमें हमने क्या देखा था कि पहले नपुसक वेद का बंध रुक जाता है और बाद में हाँ वो इसका 30 नंबर पर कुछ रुक जाता है, इस तरह से हमने देखे थे, यानी तब से उसका अंतर चालू हो गया था, इस तरह से हम देख सकते हैं। आप कहेंगे वो प्रायोगिक लब्धि वाला नहीं, हम वेदक सम्यक्त्व वाला लेते हैं, और परंतु हमने पहले देखा था भूभूमि के तीन पल्ले लिए, एक्चुअली हाँ श्रीवेद का होगा, नपुसक वेद का नहीं होगा, यानी कहीं पर भी सम्यक तो प्राप्ति के पहले, और औपशमिक का काल हमको ले सकते हैं ना हमको उसको, तो औपशमिक का भी अंतर्मुहूर्त बढ़ा सकते हैं और प्रायोगिक लब्धि का भी थोड़ा एक अंतर्मुहूर्त उसमें ले सकते हैं, यानी प्रायोगिक लब्धि में उसका अंतर शुरू हुआ, बंद रुक गया, फिर उपशम समय तो प्राप्त किया और बाद में 266 सागर रहा, इसलिए साधिक लिया, समझ में है ना अश्विन भाई? यानी प्रायोगिक लब्धि का हाँ उपशम सम्यक्त्व का काल, यानी प्रायोगिक लब्धि के बाद करण लब्धि भी आ गए ना, यानी प्रायोगिक लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त्व और प्लस 266 सागर, इतने काल तक उसने बंद नहीं किया। और जब मिथ्यात्व में आया तो सबसे प्रथम उसने पुरुष वेद का बंद किया, ऐसा हम केस लेते हैं। अन्य कोई अन्य दो वेद बांधे, फिर जाके श्री वेद बांधा, ये हमारी अंतर की प्ररूपणा चल रही। पहले हमने काल देखा था लगातार, यहाँ किसी प्रकृति का अंतर, बंध में अंतर। देखो अभी यहाँ नपुसक वेद, पांच संस्थान, पांच सहनन, ये नीचे के पांच लेना है, ये प्रशस्त वाला को छोड़कर। अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्र का, जघन्य अंतर एक समय, यानी जहां वो प्रतिपक्ष बनती है वहां तो एक समय है। देखो जहां बनती है वो प्रतिपक्ष की अपेक्षा एक समय अंतर हो सकता है। और क्या अंतर्मूर्त तो होता है, परंतु कभी कभी एक समय में फिर वापस उसके परिणाम बदल सकते हैं। और उत्कृष्ट, किंचित न्यून, तीन पल्य, अधिक 132 सागर प्रमाण है। अभी ये प्रकृतियां जो है देवगति के साथ बनती नहीं है, तीन पल्ले वाला देवगति बांध रहा है, वो इन प्रकृतियों का बंध ही नहीं करता है। पहले यहां ले जाकर बाद में उसको सम्यक तो प्राप्त कराना, फिर 266 सागर वहां रहा। नरक, मनुष्य, देवायु का, नरक और मनुष्य के बीच में एक डैश चाहिए, यानी तीन आयु लिए न। अभी हमको अंतर देखना है, नरकायु नहीं बांधी लंबे काल तक, मनुष्य अभी मिनिमम काल लेते फिर मैक्सिमम काल लेते हैं। देवायु का जघन्य अंतर्मूर्त, अभी हमारी कोई मार्गणा नहीं है, ये हमारे ओ किस कथन चल रहा है, तो उसने अंतर्मूर्त में, क्योंकि हम नहीं, आठ अपकर्ष काल होते हैं, तो एक ही भाव में उसने अंतिम दो अपकर्ष के बीच वाला अंतर है, मिनिमम अंतर हम उसको अंतर्मूर्त कह सकते हैं। अब मैक्सिमम अंतर आपको तेजल बताना है कितना होगा, नरकायु का, देवायु का, तीनों एक साथ लिया, शांति। हाँ, अंतर कितना होगा ये हमको चाहिए, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, लोक नहीं, बहुत बड़ा अनंत काल है ये। मनुष्य दुर्लभ है, दुर्लभ है कहते ना, क्यों दुर्लभ है ऐसा है, त्रस में आने पर भी ये हो सकता है कि उसको मनुष्यायु बंधी ही नहीं, ये हो सकता है। देखो क्या कहा यहाँ पर, देखो नरक, मनुष्य, देवायु का, जघन्य अंतर्मूर्त, यानी अंतिम अपकर्षों के बीच में हम उसको ले सकते हैं। फिर उत्कृष्ट, अनंत काल, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, तिर्यंचायु का, जघन्य अंतर्मूर्त, ये अंतर्मूर्त वाला भी जो दो लब्धियां पर्याप्त भवों के बीच में हम ले सकते हैं, फिर भी उसको अंतर्मूर्त कहेंगे ही। उत्कृष्ट शत सागर पृथक, देखो ये बहुत महत्व की बात है, इससे अधिक तिर्यंचायु का बन, यानी उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, शत सागर पृथक पर हम 900 सागर लेते हैं ना, सम यानी वो त्रस में आया भी, तो त्रस में आया है, अरे वहां तो तिर्यंच में से आया है, तो तिर्यंच में से यानी एक इंद्रिय में से आया, त्रस में आया, तो वहां तो उसने तिर्यंचायु बांध दी थी, तभी तो एक इंद्रिय में था, तो फिर उसने हाँ उसने बाद में कोई भी वहां से वो मनुष्यायु बांध कर आया, और फिर बाद में वो देवायु, मरेन्शायु, नरकायु बांधता रहा, और 900 सागर तक केवल मनुष्यायु, देवायु, नरकायु बांधता रहा, तो 900 सागर के बाद वो तिर्यंचायु बांधेगा ही बांधेगा नियम से। यही तो इसी से सिद्ध होता है, ये है, ये कहते ना अकेले 48 ही भव मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ये यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है, 900 सागर तक, और बार बार जब हम जब आता है तो नीचे छोटे छोटे भव ज्यादा बार करेगा वो। हाँ, हो सकता है मनुष्यों में लगातार 48 भव भी किए उसने पर्याप्तों के बीच में, अपर्याप्त होगा तो ही 48 हो सकते हैं, और फिर भी वो बारंबार देव में कभी नरक में तो जाएगा ही जाएगा, यानी नरक और देव में तो लगातार आपस में तो जा नहीं सकता, तो बीच में मनुष्य में होना पड़ेगा। तो मनुष्य के एक या भोग कर अधिक भोग करके कभी देव में गया कभी नरक में गया, इस तरह से हो सकता है। इसी से होता ना, अनेक भोग हो सकते हैं उसके। लोग पूछते हैं कहाँ लिखा है, अरे लिखा है, परंतु इसको हमको लिखा जो है उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ये तिर्यंचायु का अंतर ही इतना है, तो तिर्यंचायु नहीं बांधी तो अन्य तीन आयु ही बांधता रहा ना वो। इसको कहते हैं तिर्यंचायु का उत्कृष्ट अंतर, ये 900 सागर जिसको कहा आपको बांधी नहीं, परंतु बाद में नियम से बांधेगा, तो बांधी नहीं तो क्या बांधा। अब दूसरी बात हमने देखी थी, पुरुष वेदी में या स्त्री वेदी में भी हमने देखा था, यह नपुंसक वेद में अलग अलग घटित किया था, अभी तो हम ओघ में देख रहे हैं। अगर हम कहें पुरुष वेद में, ना ना पुरुष वेद का 100 सागर पृथक है और उसमें तिर्यंचायु का अंतर घटित करना है, पुरुष वेद में तिर्यंचायु का अंतर वह भी इतना है 100 सागर पृथक, उसका अर्थ क्या हुआ। पुरुष वेद में अभी नरक में भी नहीं गया, पुरुष वेद में रहा है मनुष्य और देव के भोग करता रहा कितने 900 सागर तक। अब देखो अब मनुष्यों के कितने भोग हो गए, हाँ ये हम बीच में मनुष्य में आना नहीं, वहां तो पुरुष वेद में और लिमिटेशन हो गई, हाँ यहाँ तो यही कहें बीच में तो मनुष्य में आना ही पड़ेगा, हाँ मनुष्य भाव ही ज्यादा हो गए उसके, और ऊपर ऊपर के इन्हें अधिक आयु वाले लगातार नहीं हो सकते, उसके लिमिट्स होते हैं। जब ऊपर ऊपर के देव कम बार बारंबार उसमें जाते हैं और नीचे के देव बहुत बार आ जा सकते हैं। हाँ देखो ये हम पढ़ रहे थे तिर्यंचायु हमने देखी थी, नरक गति, अभी गति की बात है, नरक गति, देव गति, वैक्रेक शरीर, वैक्रेक अंगोपांग, नरक और देवानुपुरी, वैक्रेक षटक जिसको कहेंगे। अब वो एक इंद्रिय में जाएगा तो बांधेगा ही नहीं, परंतु ये है तो प्रतिपक्षी प्रकृति, तो कहते जघन्य एक समय उत्कृष्ट अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। देखो मनुष्यायु का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परावर्तन आयु का, मनुष्य गति के लिए इतना अंतर नहीं कहा था, मनुष्य गति के अंतर के लिए हमको वो आयु वायु का एक में भेजना पड़ेगा, अग्नि का एक वायु का एक में है, परंतु अन्य एक इंद्रियों में हर अंतर मुहूर्त में वो मनुष्य गति बांध ही रहा है नियम से अन्य एक इंद्रियों में, परंतु आयु बंधने का समय क्योंकि असंख्यात पुद्गल परावर्तन क्यों रहा वहां, आयु जब जब बांधी तब तिर्यंच आयु तिर्यंच गति बांधी, परंतु गति का बंध वो तो कर ही रहा था। तो ये हमने देखा उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल पर, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी उद्योत का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 163 सागर, ये पृथक्त्व शब्द नहीं लगाना, 163 सागर है, पृथक्त्व शब्द यहाँ नहीं चाहिए। क्या कहते हैं देखो, देखो 163 कैसे निकालेंगे आप बताओ, हाँ
100
देव में गया, हाँ
163 हो गया,
हाँ
163
तीन पल्ले यहाँ नहीं लिया है, वो अलग होता तो देवगति का बंध होता है, परंतु उस सहित वाली ही लेना है ना, उसका तिर्यंच गति का अंतर इससे ज्यादा नहीं होगा, वो उसको उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ये पृथक तो निकाल दो, हाँ
निकालना
163 सागर है बस इतना ही चाहिए। 63 सागरों में सद लिखा है, सागरों को शत शत क्यों लिखा, 163 चाहिए ना, उपकस 63 सागरों को में सद 63 हाँ वो शत का अर्थ थे 100 163 मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र का है, जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी अग्नि का एक वायु का एक में रहने का उत्कृष्ट काल है, वो मनुष्य गति बांधने का उत्कृष्ट अंतर है। और तीर्यंच गति का अंतर कब होगा, वो सम्यक दृष्टि रहेगा तब, और ऊपर के देवों में ग्रहवेग में, ग्रहवेग में लगातार वो मनुष्य गति बांध रहा है। चार जाति, देखो ये तीन पल्ले को क्यों छोड़ा, अगर हम कहेंगे नीचे के देव में जाएगा, नहीं पहले यहाँ क्यों नहीं लिया इसका विचार करो, यहाँ ऐड करने की मत सोचो, यहाँ क्यों नहीं लिया ऐसा विचार करो, क्योंकि वो भोग भूमि में वो जाएगा नीचे के देवों में, यानी सौधर्म ईशान में, अगर सम्यक तो प्राप्त करके भेजना है तो, और फिर ऐसा नहीं क्यों नहीं लिया इसको सोचो आप, क्या 163 सागर में उसी को इंक्लूड करके बताया, इस तरह से सोचना है। आगे कहीं बात आएगी ना तीर्यंच गति संबंधी तो फिर हम रेफर करेंगे इसको। देखो चार जाति, अभी पंचेंद्रिय मार्गणा में वगैरह वो बात आएगी ना तो शायद कहेंगे ओके समान है, देख लो अन्य किसी मार्गणा में, त्रस मार्गणा में, पंचेंद्रिय मार्गणा में, वहां तो ओके समान कह देंगे और क्या। पंचेंद्रिय मार्गणा कहाँ गई, एक केंद्रियों का 91 विकलत्र है, पंचेंद्रिय त्रस का है वगैरह वगैरह, स्थान गोद्यत्रिक का, स्त्रीवेद का, ओके समान बताएंगे ना बाकी। नीचे से पांचवी लाइन, एक दो तीन चार पाँच, किस में चल रही वो, त्रस में, त्रसों में, हाँ एक सौ तिरसठ ही सागर लिया है ना, तो हमको इसके अनुसार ही चलना है। क्यों नहीं होता वो तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, क्यों नहीं होता हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, उसी में इंक्लूड करके उन्होंने बताया। हाँ मनुष्य गति की बात हमने पढ़ी, पेज नंबर 81 पर आना, चार जाति, एक इंद्रिय आदि चार जाति, आतक स्थावर आदि चार का जघन्य एक समय, क्योंकि वो प्रतिपक्षी है, मिथ्या दृष्टि उसके एक समय के अंतर से फिर दोबारा बांध सकता है, उत्कृष्ट 185 सागर प्रमाण है। देखो ये नारकी जो है, कौन सा, छठे नरक का, वो तो पंचेंद्रीय जाति बांधा, ये कुछ बांधेगा नहीं, तो वहां लास्ट में उसने सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक तो के साथ आया तो 266 सागर रहा, और बाद में वो 31 सागर में गया तो 185 सागर हो जाते हैं। देखो 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 पहले में पहले 22 छठा नरक, छठा नरक वो 22 सागर वाला, हाँ दो बार 66 लेना, फिर ग्रेव एक 31 सागर वाला। हाँ वहाँ उसके दो सागर वहाँ जाके पूरे हुए और फिर मिथ्या तो में आ गए, यानी बीच में उसको अंतर्मूर्त का भी गैप नहीं छोड़ना है, वहाँ उत्पन्न करा के वो मिथ्या तो में गए इस तरह से। तो 185 सागर इस तरह से हो सकते हैं। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ सहनन का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट कुछ अधिक तीन पल्य, यानी वो नहीं बांध रहा है कब, जब देवगति बांधेगा लगातार, तो देवगति लगातार बांधने वाला कौन है, जिस मिथ्या दृष्टि ने पहले भोग भूमि का बंध किया है, यानी तीन पल्ले का बंध किया, बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक तो में रहा, क्षायिक किया और वहाँ क्षायिक के साथ आया, तो इतने लंबे काल तक उसने हाँ मनुष्य गति का बंध नहीं किया, तो उसके देवगति का ही बंध किया है। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का, ये बंद की बात चल रही है, जघन्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन अंतर है, क्योंकि आहारक अंगोपांग किसको बंधेगा, मुनियों को सातवें आठवें में, और वो मिथ्यात्व में आते हैं तो उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परावर्तन कुछ कम, और उसका एक समय का अंतर कभी नहीं होगा, काल एक समय हो सकता है कि एक समय में बांधना शुरू किया आठवें में मरकर देव हुआ, ये हो सकता है, काल एक समय हो सकता है, अंतर एक समय नहीं होगा। अंतर कब पड़ेगा, सातवें से छठे में आया तो अंतर हुआ और फिर चढ़ा तो चालू हुआ बंद, या आठवें के बाद श्रेणी चढ़ के वापस आया नीचे आया तो फिर बंद शुरू हुआ, तो अंतर मोड़ से कम अंतर नहीं होगा उसका, ये उसका अर्थ होता है, इसी का विशेष अर्थ। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अधक करण अपूर्व करण अनिवृत्ति करण रूप तीन करण करके उपशम सम्यक्त्व तथा अप्रमत्त गुण स्थान को एक साथ प्राप्त होकर अनंत संसार का छेद करके अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र किया, यानी उसका संसार का काल उसका अर्ध पुद्गल परिवर्तन रह गया, इस अप्रमत्त गुण स्थान में अंतर्मूर्त रहकर प्रमत्त हुआ और अंतर को प्राप्त हुआ, यानी बारंबार उसने छठा सातवा किया ना, पहले सातवें में आया फिर छठा सातवा छठा सातवा छठा सातवा, वो तो उपशम सम्यक्त में तो करेगा ही करेगा अंतर्मूर्त तक, बाद में छठे में आकर उसका उपशम सम्यक्त में से वो छूट गया, हम कहेंगे छठा गुणस्थान भी छूट गया, तो उसका अंतर शुरू हुआ। मिथ्यात्व के साथ अर्ध पुद्गल परावर्तन काल व्यतीत कर अंतिम भव में सम्यक्त्व अथवा देश संयम को प्राप्त कर अंतर बढ़ाना है ना, दर्शन मोहनी तीन और अनंतानुबंधी चार अर्थात सात प्रकृतियों का क्षय करके अप्रमत्त संयत हुआ, पहले क्षायिक होकर बाद में सातवें में गया, तो सातवें में गया तो उसने बंध चालू किया, बाद में श्रेणी चढ़ेगा, यानी सातवें में जाकर श्रेणी चढ़ने वाला इतना काल छोड़कर उसने उसको लंबाया बंद करने के लिए। इस प्रकार अप्रमत्त संयत का अंतर काल उपलब्ध हुआ, अप्रमत्त संयत के अंतर से उन्होंने ये तो ये आहारक द्वीप के बंध का अंतर घटित कर दिया। पुनः ये अनंतर शब्द था वो हमने अंतर किया था लास्ट टाइम, अप्रमत्त संयत का अनंतर काल ने अंतर काल, वो बीच में न निकाल दो, लक्ष्मी आप में क्या छपा है, हाँ ये सबकी पुस्तक एक से में है नहीं कहा। पुनः प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में हजारों बार परावर्तन करके अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः यानी बाद में कितना काल उसको घटाना है कुछ कम में, इसीलिए वो बात बता रहे हैं। पुनः अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय क्षीण कषाय संयोग केवली अवयोग केवली होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 10 अंतर्मूर्तों से कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर है, यही अंतर आहारक द्विक के बंध के विषय में होगा, कारण आहारक द्विक का बंध अप्रमत्त संयत में होता है, अब वो 10 अंतर्मुहूर्त में और एक अंतर्मुहूर्त बढ़ाना, क्योंकि जब सातवें में आया है तो छठा सातवां हजारों बार है अंतर्मुहूर्त तक करेगा, बाद में श्रेणी चढ़ेगा। उसने एक बार बंद किया तो अंतर समाप्त हुआ, फिर बंद अबंद बंद अबंद करता रहेगा थोड़े काल तक और फिर श्रेणी चढ़ेगा। अब 82 नंबर पेज पर आते, 82 पर। अब यहां से मार्गणाओं में बात चालू हो जाएगी, आदेश से। नारकियों में, अभी नारकी के रहते हुए हमको अंतर करना है, तो वहां जो ध्रुवबंदी है उसका कभी अंतर नहीं, नारकी के उस मार्गणा में अंतर नहीं होगा। हाँ, तो देखो नारकियों में 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण, 12 कषाय, यानी ये ऐसे पहले से चौथे तक बनती रहती है ऐसी प्रकृति वाली, भय जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस कारमान शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वर्णचार, अगुरु लघुचार, त्रसचार, निर्माण, और जो तीर्थंकर बांध रहा है उसके लिए तीर्थंकर, और 5 अंतरायों के बंध का अंतर नहीं है। ये समझ में आते हैं बात, क्योंकि ये तो पंचेंद्रिय जाति बांधेंगे, औदारिक शरीर अंगोपांग दोनों बांधेंगे, इस तरह से लेना है। और जो तीर्थंकर के बंध करने वाला है वो तो लगातार बांधेगा ही बांधेगा। आप कहेंगे दूसरे और तीसरे नरक में, हर शुरुआत में नहीं था, पर एक बार बंध शुरू हुआ तब कभी गैप नहीं होगी उसकी, ये उसका अंतर नहीं है। अब स्त्यान वृद्धि त्रिक, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी 4 का जघन्य अंतर अंतर्मूल, जघन्य अंतर के बाद वहां कॉमन ही चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व में रहने का काल लेना। उत्कृष्ट कुछ कम 33 सागर है, सातवें नरक में विशेषार्थ। यहां नरक गति के आश्रय से बद्यमान प्रकृतियों के अंतर का कथन किया गया है। क्षुद्रक बंध में, क्षुद्रक बंध यानी वो तो सातवीं पुस्तक खुद्दा बंध जिसका नाम था, इस प्रकार विशेष कथन की विवक्षा के स्थान में सामान्य रूप से प्रतिपादन किया गया है। जैसे नरक गति में नारकी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य जघन्य से अंतर्मूर्त तथा उत्कृष्ट से अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहते। वो नरक गति मार्गणा का अंतर हुआ, हाँ नहीं नहीं बरोबर है, नरक गति में नारकी कहने की पद्धति, वहां पर नरक गति में नारकी ने नरक गति का जो जीव नरक में गया ही नहीं उसका अंतर कितना होता है, तो कहते कि वहां से निकला अंतर्मूर्त में एकाध भोग किया फिर नरक में आया, ये हो सकता है, ये नरक गति के उदय की अपेक्षा अंतर इतना हो सकता है उसका। जो हमने अभी नरकायु के बंध का अंतर देखा ना, या नरक गति के बंध का भी अंतर देखा था, तो उसके बात यहां बता रहे हैं। हमारी बात है नरक गति के रहते हुए इन प्रकृतियों का अंतर, ये थोड़ी अलग बात है। हा? भूतबली स्वामी रचित सूत्र इस प्रकार है, एक जीवेण अंतराणुगमेण गदीयाणुवादेन निरय गदीये नेरयाणम अंतरम केव चिरम कालादो हो दी जहन्येन अंतमोत्तम उक्कस्येन अनंत कालम असंख्य जपोगल पर्यट्टम। इन पूर्वोक्त सूत्रों पर धवला टीका में प्रकाश डालते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं, नरक से निकलकर गर्भोपक्रांतिक तिर्यंच जीवों में, यानी वो नियम से गर्भज ही होते हैं, मनुष्य हो या तिर्यंच हो अथवा मनुष्यों में उत्पन्न हो, सबसे कम आयु के भीतर नरकायु के बांध मरण कर पुनः नरकों में उत्पन्न हुए नारकी जीव के नरक गति से अंतर्मूर्त मात्र अंतर पाया जाता है, यानी उसका नरक भोग का अंतर लिया उन्होंने। वो तुमने वो तो गर्भ का बालक जाएगा वहां अंतर्मूर्त वाली आयु करके, फिर अंतर्मूर्त का अंतर बताए ना। उत्कृष्ट अंतर के संबंध में इस प्रकार स्पष्ट किया है, नारकी जीव के नरक से निकलकर अविवक्षित गतियों में आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन भ्रमण करके पश्चात पुनः नरकों में उत्पन्न होने पर सूत्रोक्त अंतर का प्रमाण पाया जाता है। अब इससे हमारे यहाँ का विषय से कुछ लगता नहीं, ये तो सामान्य जानकारी हुई। अब महाबंध में अभी हमारा जो विषय है, नारकियों में ज्ञानावरण आदि के अंतर का अभाव कहा है, क्योंकि जो नारकी पहले गुणस्थान वाला दूसरा तीसरा चौथा वाला वो तो इनका बंध कर ही रहा है, स्त्यान वृद्धि आदि का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त तथा उत्कृष्ट अंतर देशों ने 33 सागर कहा है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई मनुष्य या तीर्यंच नीचे सातवीं पृथ्वी के नारकियों में पैदा हुआ। 6 पर्याप्तियों को पूर्ण कर विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर अल्प आयु के शेष रहने पर मिथ्यात्व को पुनः प्राप्त हुआ। पुनः तीर्यंच आयु को बांध कर, यानी पहले 3 अंतर्मूर्त लिया, लास्ट में फिर 3 अंतर्मूर्त लेना, विश्राम लेकर निकला। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर प्रमाण मिथ्यात्व का अंतर है, यानी वो काल उसका मिथ्यात्व के अंतर का प्रमाण है। यही अंतर स्त्यांग वृद्धित्रिक और अनंतानुबंधी 4 का भी होगा, जो हमने पहले पैराग्राफ में देखा था उसका स्पष्टीकरण ये है। बीच वाली बात तो वो इससे लगती नहीं है, वो तो अन्य अपेक्षा वहां थी। अब ये तो ध्रुवबंदी के बाद नीचे आना एकदम, और स्त्यांग वृद्धि वगैरह के बाद लास्ट पैराग्राफ। साता असाता वेदनीय पुरुष वेद 4 नौकशाय समचत्र संस्थान वज्र ऋषभ सहनन प्रशस्त भ्यायुगति स्थिरादि 2 युगल सुभग सुस्वर आदेय का जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। एक तो प्रतिपक्षी है, समय दृष्टि बांधता है, उसके तो अंतर नहीं है, परंतु तो अंतर की बात यहाँ चल रही अपनी। स्त्री वेद नपुसक वेद, अभी इनका अंतर होगा, जब सम्यक्त्व में रहेगा तो इनका अंतर कहलाएगा। 2 गति 5 संस्थान 5 सहनन 2 आयु आनुपूर्वी, आयु नहीं आनुपूर्वी। देखो देखो गतियां कौन से बनती है यहाँ पर, मनुष्य और तीर्यंच गति है, तो उसमें ही गति का अंतर बता रहे हो। तो गति बांधने में देखो देखो प्रतिपक्षी है तो एक समय का अंतर तो ही हो सकता है। हाँ, उत्कृष्ट में कैसे लेना, जिसे सातवें नरक में घटित करना है। तीर्यंच गति का अंतर कब होगा, जब सम्यक्त होगा तो। और मनुष्य गति का अंतर कब होगा, स्टार्टिंग में सम्यक्त हुआ फिर मिथ्यात्व में आया, और फिर लास्ट में फिर सम्यक्त प्राप्त किया फिर मिथ्यात्व में गया। इस तरह से दोनों ओर उसको घटित हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, स्त्री वेद नपुसक वेद 2 गति 5 संस्थान 5 सहनन 2 आयु लिखा है, वो अनुपूर्वी होना चाहिए। हमने ऊपर भी देखा ना, ऊपर भी उन्होंने आयु को ब्रैकेट में अनुपूर्वी उन्होंने सुधार कर लिखा था। हाँ ओरिजिनल था इसलिए उन्होंने लिखा है, परंतु अनुपूर्वी ठीक है। अप्रशस्त भ्याय गति, क्योंकि 2 आयु का अंतर हम बाद में बताए अलग से। उद्योत दुर्भग दुस्वर अनादेय नीच और उच्च गोत्र का जघन्य अंतर एक समय, जघन्य अंतर एक समय तो किसी भी नारकी के हो सकता है, अभी सातवें को छोड़कर कितने भी प्रकृतियों के लिए। उत्कृष्ट कुछ कम 33 सागर, ये गति के लिए कहो, नीचे उच्च गोत्र के लिए कहा, वहां ले लेना हमको। विशेष यहाँ 2 आयु के स्थान में 2 अनुपूर्वी पाठ उपयुक्त लगता है, कारण 2 आयु का अंतर आगे कहा गया है। 2 आयु का जघन्य अंतर्मूर्त अपकर्ष के बीच में, वहां भी 6 महीने में 8 अपकर्ष होते हैं, तो अंतिम 2 अपकर्ष के बीच का वो अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट कुछ कम 6 माह अंतर है, क्योंकि 6 महीना बाकी था तो पहली बार आयु बंधी और 8वीं बार अंत में बंधी, तो कुछ कम 6 महीना हो गया। विशेषार्थ नारकियों में भुज्यमान आयु के अधिक से अधिक 6 माह और कम से कम अंतर्मूर्त शेष रहने पर आगामी बध्यमान मनुष्य तीर्यंच आयु का बंध होता है। किसी जीव ने 6 महीने जीवन शेष रहने पर प्रथम अंतर्मूर्त में नरक गति में परभव की आयु का बंध किया और पश्चात मरण समय में पुनः बंध किया, इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर होगा। इस प्रकार प्रथम से छठी पृथ्वी पर्यंत जानना। क्योंकि दो आयु लिखा ना, इसलिए प्रथम से छठी, और सातवीं में तीरंच आयु का ही कहना पड़ेगा। यहां ध्रुव प्रकृतियों तथा तीर्थंकर का अंतर नहीं है, यानी नारकियों में जो ध्रुव प्रकृतियों का अंतर नहीं पहले बताए थे ना, विशेषार्थ तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव मिथ्यात्व सहित मरण कर मेघा नाम की तीसरी पृथ्वी से नीचे नहीं जाता। तीसरी तक जाता है, दूसरी तीसरे में जाता है मिथ्यात्व में। इससे उसके बंध का अंतर नहीं, उस इससे उसका बंध, उसका बंध, बंध का अंतर नहीं, उसका बंध तीसरी पृथ्वी तक जानना चाहिए। पर जो बांध रहे उसमें अंतर तो नहीं होता, नीचे की पृथ्वियों में नहीं जानना चाहिए। अभी तीर्थंकर का अंतर नहीं के बाद नीचे विशेषाद के नीचे साता दंडक का है, वो जो प्रतिपक्षी वाली प्रकृति है साता साता वगैरह, ओग के समान अर्थात जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। अंतर की बात चल रही, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र में प्रविष्ट के विशेष जानना चाहिए। गोत्र में प्रविष्ट के एक एक मिनट, यहाँ क्या कहते हैं, साता दंडक में हम किस किस को ले सकते हैं? दोनों गति ली थी, दोनों गतियों के लिए हमने देखा था ना, जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर लिया था। यहाँ कहते हैं मनुष्य गति मनुष्य गति ने उच्च गोत्र में प्रविष्ट के विशेष जानना चाहिए। किसकी बात चल रही है? अच्छा, ना 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 ना, पहले से छठे तक की बात चल, छठी पृथ्वी तक के लिए कंडीशन चल रही। पहले में पहले हमारा नारकी का वो हो गया, नारकी का हो गया, नारकी इन जनरल, नारकी इन जनरल ये 83 पेज के वो जो तीर्थंकर का अंतर नहीं है ना, नहीं पहले पैराग्राफ तक था। फिर से सुनो, नारकी इन जनरल जब बात की तो 83 पेज पर पहले तीन लाइन तक हुआ, उसके बाद विशेषार्थ के बाद क्या लिखा है, इस प्रकार प्रथम से छठी पृथ्वी पर्यंत जानना चाहिए, यानी नारकियों के भेदों की चर्चा है। तो वो छह पृथ्वी तक मनुष्य गति वो जो है उसके लिए हम उसका अंतर कितना कहेंगे, अंतर्मूर्त कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे, यानी उसको साता असाता में ले लेना। छठी पृथ्वी तक मनुष्य गति को, तीरंज गति को नहीं ले सकता, क्योंकि तीरंज गति का अंतर तो समय दृष्टि में पहले छह नरकों में, तीरंज गति का अंतर कब होगा उसको समय को में रखा, तो वहां के उस नरक की अपनी अपनी जो उत्कृष्ट है, हाँ वहां तक उसका अंतर लेना। ख्याल में आई बात? इन्हें ये तो प्रथम से छठी पृथ्वी तक की ये बात चल रही है, यानी वो साता के समान उसको कर कहना, यानी एक समय से अंतर में। शेष प्रकृतियों में नारकियों के ओग के समान है। शेष प्रकृतियां ने हमने देखा था जो जो, हाँ जो जो यानी बंध विच्छित होने वाली जो जो समय दृष्टि नहीं बांधता है उसमें लेना, कि उसमें विशेषता क्या होगा, प्रत्येक नरक में अपनी अपनी स्थिति के समान अंतर जानना चाहिए। यानी वो नारक ही उत्पन्न हुआ और समय दृष्टि हुआ तो उसका लास्ट में फिर बंधना है, नारकी के रहते हुए फिर बंध कराना है, अंत में मिथ्यात्व में लाना है एक अंतर्मूर्त के लिए। तो प्रत्येक नरक का अपने अपने उत्कृष्ट, एक सागर है, तीन सागर, जो कुछ है वो वहाँ आपको बताना है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि नारकी इन जनरल का उत्कृष्ट अंतर हमने कुछ कम 33 सागर कहा था, परंतु यहाँ पहले से 6 नरक तक अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहना, कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति, ये कहना। सातवीं पृथ्वी में सामान्य नरक के समान अंतर है, इतना विशेष है कि दो गति, दो अनुपूर्वी, दो गोत्र का, अभी वहां एक समय का अंतर नहीं घटित होगा सातवीं पृथ्वी में, क्योंकि उसमें प्रतिपक्ष ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि तीरंज गति बांधेगा, समय दृष्टि मनुष्य गति बांधेगा, तो एक समय में वापस उसमें लौटने का सवाल नहीं होता, तो वहां अंतर्मूर्त की बात होगी। इसलिए सातवीं पृथ्वी में उनका दो गति, दो अनुपूर्वी और दो गोत्र का जघन्य अंतर्मूर्त होगा, उत्कृष्ट कुछ कम 33 सागर अंतर।
ये ख्याल में आते लक्ष्मी भाई,
पहले नरक इन जनरल बात की, उसको नारकी का ओक कहते हैं, और बाद में पहले से 6 पृथ्वी तक की बात अलग दी, वहां मनुष्य गति को प्रतिपक्षी में लिया, उसका अंतर एक समय से, जो कुछ अपना अपना उत्कृष्ट काल लेना, वहां स्थिति जिसको कहेंगे, शुरुआत में मिथ्या दृष्टि था और फिर लास्ट में मिथ्यात्व में आया, वो तीरंज गति का अंतर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये नारकियों की प्ररूपणा हो गई, अब तीरंजों में हमको देखना है। तो तीरंजों में रहते हुए ये जो चौथे गुणस्थान पांचवे तक जो बनती है, तो उसका कभी अंतर ही नहीं होगा, सभी तीरंजों में तो उसका बंद होगा, जैसे 5 ज्ञानावरण है, 6 दर्शनावरण है, उसका अंतर कभी नहीं होगा, यही कह रहे। 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण, 8 कषाय, 8 कषाय कौन से, जिसका अंतर नहीं होगा, प्रत्याख्यान, संज्वलन, भय जुगुप्सा, तेजस कारमान, देखो तेजस कारमान, वर्ण चतुष्क, अगर लोग चतुष्क कैसे लेंगे, अरे परघात और उच्छ्वास तो हर समय थोड़ी बनती है, वो पर्याप्त के साथ नरक में चले गए। वर्ण चतुष्क, अगुर लघु उपघात, हमको ध्रुवबंदी चाहिए ना, निर्माण, और 5 अंतरायों का, बंध का अंतर नहीं है क्योंकि इनका निरंतर बंध होता है, ये ध्रुवबंदी है उनके लिए, तीगेंचों के लिए। स्त्यान गृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 4 का जघन्य अंतर्मूर्त, क्योंकि वो अंतर्मूर्त के लिए सम्यक्त्व में आया तो इसका बंध रुक गया और वापस में मिथ्यात्व में चला गया। उत्कृष्ट कुछ कम 3 पल्य है, देखो इनका बंद करने कौन वाला कौन है, मिथ्या दृष्टि, तो तीरंजों में लगातार रहा और इनका बंधन न हो, यानी तीरंजों में रहते हुए सम्यक्त्व प्राप्त किया। अब जो तीरंज सम्यक्त्व प्राप्त करके बाद में भोगभूमि में तो नहीं जा सकता, तो तीरंजों की एक आयु लेनी है तो 3 पल्य वाले लेंगे, तो वहां उसने जाने के बाद वहां सम्यक तो प्राप्त किया और लास्ट में फिर वो मिथ्या तो में आया, ये नक्की करना है। तीरें चौंके रहते हुए फिर बंद किया तब अंतर घटित होगा, इसलिए कुछ कम। हाँ, चौथा गुण स्थान है, पर स्थान वृद्धि मिथ्यात्व तो और अनंतानुबंधी का अंतर घटित हो ही जाता है, चौथा गुण स्थान। आप क्या कह रहे, हाँ चौथा ही गुणस्थान है, वहां तो पांचवा है नहीं। इसी प्रकार स्त्री वेद का अंतर समझना चाहिए, विशेष यह है कि यहाँ जघन्य एक समय और उत्कृष्ट कुछ कम 3 पल्य है, यानी एक समय का अंतर हो सकता है, अन्यत्र कि एक समय के लिए अन्य वेद बांधा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में उसको प्रतिपक्ष है। अब आते 84 पेज पर, 84 पर विशेषार्थ। एक मनुष्य तीरंज 28 मोहनी की प्रकृतियों की सत्ता वाला, तीन पल्ले की आयु वाले मुर्गा बंदर आदि में उत्पन्न हुआ। वो गर्भकाल छोटा करने के लिए उन्होंने 2 माह गर्भ में रहकर बाहर निकला। यहाँ आचार्य परंपरागत दक्षिण प्रतिपत्ति के अनुसार ऐसा उपदेश है कि तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ जीव 2 माह और मुहूर्त पृथक्त्व के ऊपर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रतिपत्ति के अनुसार तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ जीव 3 पक्ष 1.5 महीना 3 दिन और अंतर्मुहूर्त के ऊपर सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। पश्चात आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त कर मरण किया। इस प्रकार आदि के मुहूर्त पृथक्त्व से अधिक 2 मासों से और आयु के अंत में उपलब्ध 2 अंतर्मुहूर्त से न्यून 3 पल्योपम काल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर है। तिर्यंचों में जो सम्यक्त्व तो प्राप्त होता है, भूभूमि में सम्यक्त्व की बात है। दक्षिण प्रतिपत्ति उत्तर प्रकृति यानी तो पता नहीं है दक्षिण उत्तर उसके लिए कहा है या सही थोड़ा नहीं सही है इस तरह से कहा पता नहीं, परंतु दोनों ही प्रतिपत्ति के अनुसार लिखा है। अने दो उसमें मत है, बस इतना ही। अने 2 माह और मुहूर्त पृथक है। हमने वहां देखा था ना, हमने देखा था उत्तम भोग में तो हमने 3-3 दिन के बाद की थी। 7-7 दिन इन जनरल था, 5-5 दिन मध्यम भूभूमि के लिए, और हमने कहीं कहीं 3-3 दिन की भी बात देखी थी। तो 3×7=21 हो जाएगी उसके, पता नहीं कैसे भी ये, पर यहाँ गर्भ वो तो जन्म के बाद की बात थी और यहाँ गर्भ के ये 2 महीने या 3 पक्ष ऐसा लिया। आगे दे वो तो हम तो आगम से ही चलते हैं, उसमें तो हमारा कोई दिमाग चलेगा नहीं, है ना। अब आगे अन्य प्रकृतियों की बात करते। देखिए ये तिर्यंचों में हमने देखे थे स्थान वृद्धि का अंतर, अभी हमने देखा वगैरह वगैरह। साता असाता वेदनिया 5 नौकषा यानी 2 युगल है और पुरुष वेद है। पंचेंद्रिय जाति समचतुर संस्थान परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति त्रस चतुष्क स्थिरादि 2 युगल सुभग सुस्वर आदेय का, यहाँ यश और अयश डालना पड़ेगा। दो युगल नहीं तो 3 युगल लिखते ना, पता नहीं। अंतर जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। आधे के बाद यश कीर्ति अयश कीर्ति होना चाहिए, पहले भी हमने कहीं डाला था ना ऐसा। इसका अंतर्मूर्त है ना, जो इसको लगातार काल जो है हमने देखा था कि लगातार बांधने वाले कौन है। हाँ, जो समचतुर संसार वगैरह की बात करते हैं, साता असाता को नहीं लेना। यानी इनका जो अंतर कब हो सकता है, जब इनका प्रतिपक्षी मिथ्यात्व अवस्था में बनता है तब, तो एक समय से अंतर्मूर्त होगा। किसको? हाँ, यश अयश दोनों को लेना पड़ेगा। सुसर आदेज यश अयश या थीरादि 3 युग करते तो हो सकता था। अभी आगे बढ़ते हैं। अप्रत्याख्यानावरण चार, तेजल इसका अंतर कब होगा?
पांचवें गुणस्थान में भी रहेगा
सर। और कोई गुणस्थान है? वही है नपुसक वेद तीर्यंच गति, यानी तो समय तो में रहा तो इसका अंतर है। चार जाति, औदारिक शरीर, पांच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह सहनन, तीर्यंचानु पूर्वी, पूर्वी बराबर करो, आतप उद्योत, अप्रशस्त विहाय गति, स्थावरादि चतुष्क, दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र का जघन्य अंतर एक समय है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण चार का जघन्य अंतर मूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्व, सबके लिए उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्व कोटि, क्योंकि सम्यक्त्व में रहने का लगातार काल लिया हमने। देखो ये भोग भूमि को क्यों नहीं लिया, नपुसक वेद वगैरह की अप्रत्याख्या का तो बंद चल ही रहा है, पर नपुसक वेद वहां रहते, पांचवें गुणस्थान की बात नहीं, नपुसक वेद की बात करेंगे, पर वहां तो वो देवगति का ही बंद कर रहा है लगातार, यानी वहां रहते हुए वापस अगर नपुसक वेद का बंद करेता तो वहां उसको अंतर घटित कर, अंतर घटित करने के लिए वहां ले ही नहीं सकते। हाँ हो सकता है कि पहले अंतर मुहूर्त में बांधा, परंतु वहां अंतर के लिए वापस उसको बंद कराने वो शक्य नहीं है, इसलिए तीन पल्ले की आयु यहाँ ले नहीं सकते। हाँ कुछ कम एक पूर्व को एक ही भाव लेना है। हाँ हाँ स्त्रीवेद के लिए तो उसका बंद तो भोगभूमि वाला कर सकता है, इसलिए वहां ले सकते हैं। हाँ इन्हें बाकी के लिए जघन्य एक समय हो सकता है, पर अप्रत्याख्यानावरण का एक समय तो नहीं होगा, पांचवें गुणस्थान में मिनिमम अंतर्मूर्त रहेगा तभी उसका अंतर घटित हो सकता है, तो मिनिमम अंतर्मूर्त और सबके लिए उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्व कोटि। पूरा प्रश्न फिर
अवस्था में वो नपुसक वेद का बंद कर सकता है,
करेगा क्यों, मिथ्या दृष्टि है और मनुष्य गति तिर्यंच गति बांध रहा है, तीनों वेद का बंद तो होगा ही होगा, कोई भी हो सकता है, अभी उसकी विच्छित्ति नहीं है कुछ ऐसा तो है ही नहीं, बंद के लिए नहीं, उसके लिए कोई रुकावट का कारण नहीं है। देखो विशेषण, कोई मिथ्या दृष्टि जीव संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन पर्याप्तक एक कोटि पूर्व की आयु वाले तीरंच में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों को पूर्ण कर विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक्त्व तथा संयमा संयम को प्राप्त किया, मरण समय देश संयम से च्युत हो गया, इस प्रकार उसके एक कोटि पूर्व में कुछ कम काल पर्यंत अप्रत्याख्यानावरण चार का अंतर होगा, यानी देश संयम से च्युत होकर अंतर्मूर्त रहेगा फिर जाके वो मरेगा, इस तरह से लेना है। हाँ सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि सम्यूर्छन है ना, सम्यूर्छन में तो सादी मिथ्या दृष्टि हाँ प्रथम उपशम वहां नहीं हो सकता, अर्लीएस्ट उसको ऊपर के गुणस्थानों में ले जाना था इसलिए, और बाकी जो नपुसक वेद वगैरह वगैरह के लिए तो चौथे में भी ले जा सकते हैं, अप्रत्याख्यान के लिए उसके पंचम गुणस्थान में हमने वो प्राप्त कराया। तीन आयु का, तीर्यंच में रहते हुए तीन आयु की बात है, तीर्यंच में सुनो अभी, तीर्यंच में नरकायु का अंतर कितना होगा?
नरकायु का अंतर
अनंत का, यानी तीर्यंच ने नरकायु बांधी तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, तो उसकी तीर्यंच मार्गना छूट गई, तो तीर्यंच रहते हुए दो बार नरकायुग कब बांधेगा? पहला अपकर्ष अंतर पूर्व कोटि वाला और फिर अंत में, इस तरह से हमको सोचना है। हाँ देखो देखो तीनों का ऐसा है, और तीर्यंच रहते हुए तीर्यंच आयु का बंद कर रहा है तो वो एकलव्य पर्याप्त का भी उसमें इतना होगा ना, क्योंकि यहाँ मिनिमम अंतर ना, यहाँ अंतिम अपकर्ष में किया और वहाँ पहले अपकर्ष में किया, तो एक पूरा क्षुद्र वो बीच में अंतर चला जाएगा। और तीर्यंच के रहते हुए आयु का, तीर्यंच आयु का मैक्सिमम अंतर कब होगा? तीर्यंच के रहते हुए तीर्यंच आयु बांधने का उत्कृष्ट अंतर, यानी दो बार लगातार तीर्यंच में रखना है। यहाँ तीन पल्ले का कोई काम नहीं, वो देवायु बांधने वाला है। हाँ देखो यहाँ वन थर्ड पूर्व कोटि के स्टार्टिंग में और नेक्स्ट भव में अंतिम अंतर्मूर्त में बांधा, यानी वो पूरा जब करीबन पूरा पूर्व कोटि, यानी कुछ कम पूर्व कोटि, और ये वन थर्ड पूर्व कोटि, यानी उसका अंतर अभी दो अंतर्मूर्त कम भी करो तो कुछ कम वन थर्ड पूर्व कोटि प्लस एक पूर्व कोटि। देखो अभी हम पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ा नहीं था। तीन आयु का जघन्य अंतर्मूर्त यानी दो अपकर्ष के बीच में, और उत्कृष्ट अंतर एक कोटि पूर्व के तीन भागों में से कुछ कम एक भाग प्रमाण है, यानी वंतर पूर्व कोटि जिसको हम कहेंगे, कुछ कम वंतर पूर्व कोटि। इन्हें पहली बार आयु बांधी और अंतिम अपकर्ष में फिर बांधी। तीर्यंच आयु का जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट कुछ अधिक एक कोटि पूर्व अंतर है, यानी वन प्लस वन है, एक पूर्णांक एक तृतीयांश पूर्व कोटि, कुछ कम, हाँ कुछ कम लेना उसमें, अधिक में वन थर्ड पूर्व कोटि ऐड करना। हाँ लब्धि अपर्याप्तक में भी आठ अपकर्ष काल होते हैं, फिर भी वो है ही अंतर्मूर्त के भेद ही है उतने, और वो भी उसके टू थर्ड बीत जाने पर वन थर्ड रहते हैं ना, वहाँ आयु का बंध भी अंतर्मूर्त करेगा। हाँ देखो आठवें के बाद, आठ अपकर्ष के बाद असंक्षेपाधा वाला जो होता है, पहले आठ में नहीं करेंगे तो वो असंक्षेपाधा वाला है, पर वो भी आयु का अंतर्मूर्त बंद होकर आवली के असंख्यात भाग शेष रह सकता है, उसको असंक्षेपाधा का, उसको भी अंतर्मूर्त गिन गया, गिन लिया। ये तीन तीर्यंच आयु की बात हो गई। वैक्रीक षटक का, तीर्यंच में रहते हुए वैक्रीक षटक का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि वो हाँ प्रतिपक्ष वाली है। उत्कृष्ट अनंत काल है, क्योंकि एक इंद्रिय में गया तो ये वैक्रीक षटक बंधेगा ही नहीं, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपुरी और उच्च गोत्र का ओग के समान अंतर जानना चाहिए, यानी जघन्य अंतर तो एक समय होगा प्रतिपक्षी है, उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक हो जाएगा, क्योंकि तीर्यंच है ना तो अग्नि का एक वायु का एक में उसको भेजेंगे तो असंख्यात लोक हो। असंख्यात तो नहीं होते, आवली संख्यात है, समय असंख्यात है ना, क्योंकि वो अंतर्मूर्त है ना, अंतर्मूर्त में संख्यात आवली होती है, असंख्यात आवली नहीं होते। हाँ देखिए अभी हम पेज नंबर 84 पर लास्ट, अभी मार्गणा हमारी कौन सी है, हाँ तीर्यंचों में जो भेद है, पहले सामान्य से तीर्यंच बताया, अब पंचेंद्रिय तीर्यंच। सामान्य तीर्यंच जो हम असंख्यात पुद्गल परावर्तन का अंतर काल देखते थे उसका, अब यह अपने अपने पूर्व कोटि पृथक प्लस तीन पल्ले होगा। पंचेंद्रिय तीर्यंच पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिमति में। ध्रुव प्रकृतियों का अंतर नहीं है क्योंकि इनका निरंतर बंध होता है। ये तो यहाँ ध्रुव प्रकृतियां पांचवे तक जो बनती उसको ध्रुव प्रकृति कहेंगे। स्त्यान वृद्धित्रिक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चार का जघन्य अंतर्मूर्त। जघन्य अंतर्मूर्त किस लिए? अंतर्मूर्त तक सम्यक्त्व में रहा वो इसका अंतर हुआ। तथा स्त्रीवेद का जघन्य एक समय वो प्रतिपक्ष वाली है। तथा इन सब का उत्कृष्ट कुछ कम तीन पल्ले अंतर है क्योंकि तीर्यंच से तीर्यंच लगातार नहीं जा सकते हम इसको क्योंकि उसको सम्यक तो प्राप्त करें। श्रीवेद का अंतर कैसे हो कैसे होगा? सम्यक दर्शन में रखना है तो वहां तो उसका मिथ्या दृष्टि भूभूमि वाला श्रीवेद का बंद किया फिर सम्यक दृष्टि हुआ तो उसने उसका बंधन नहीं किया अंत में जाके फिर उसको बंद कराना है इसे मिथ्या तो में लाना है। तो तीन पल्ले अंतर है। विशेषार्थ मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता रखने वाले तीर्यंच अथवा मनुष्य तीन पल्योपम की आयु वाले पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक ये तीन त्रिक में सब लेना योनिमति हो पर्याप्त हो या पंचेंद्रिय तीर्यंच इन जनरल बात है कुक्कुट मरकट आदि में उत्पन्न हो उत्पन्न हुए वहां दो माह गर्भ में रहकर निकले वहां नहीं वह चाहिए उत्पन्न हुए और वह ने वह कर देते और दो माह गर्भ में रहकर निकले यानी इसको स्वीकार वाला ये दो माह वाला उन्होंने अधिक स्वीकार है। मूर्त पृथक्त्व से विशुद्ध होकर उसको कुछ मुहूर्त पृथक्त्व में ही उसको सम्यक्त्व प्राप्त किया वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त हुए और आयु के अंत में आगामी आयु को बांध कर मिथ्यात्व सहित मरण किया। पुनः इस प्रकार दो अंतर्मूर्तों से तथा मुहूर्त पृथक्त्व से अधिक दो मासों से न्यून तीन पल्योपम काल तीनों प्रकार के तीर्यंच मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। यही अंतर मिथ्यात्व आदि का भी है यानी कुछ कम तीन पल्ले जो कहा है ना मिथ्यात्व आदि का अंतर पर मिथ्यात्व का जघन्य अंतर मूर्त है और श्रीवेद का जघन्य एक समय ये इसके डिफरेंस है। सबके लिए उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्ले यानी वो उत्पन्न होने के बाद सम्यक्त्व कितने कब से कब तक होता है ये बात यहाँ बताई उन्होंने। साता असाता वेदनीय पांच नौ कषाय यानी दो युगल और पुरुष वेद देवगति चार पंचेंद्रिय चाति समचतुर संस्थान परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति त्रस चार स्थिरादि दो युगल सुभग सुस्वर आदेय और उच्च गोत्र का ये हर जगह वो यशक को क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे ख्याल वो दो युगल में उनको तीन युगल कहना था कि क्या वो बनती है ना देखो ये कैसे है सभी प्रकृतियां जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर इसका काल कितना है तो हम भूभूमि में ले सकते हैं पर अंतर के लिए हमको कर्म भूमि में इसका अंतर घटित करना है और वो तो मिथ्या दृष्टि की तो उसका तो अंतर होगा ही होगा मिथ्या दृष्टि के इनके प्रतिपक्ष भी बनती है तो इनका अंतर एक समय से अंतर्मूर्त होगा। अप्रत्याख्यानावरण चार का जघन्य अंतर्मूर्त ये तो पांचवे गुणस्थान में रखना है अंतर्मूर्त तक और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि अंतर है क्योंकि एक कर्म भूमिका लेना है इसमें एक भाव, तभी पांचवा गुण स्थान प्राप्त हो सकता है। तो कुछ कम एक पूर्व कोटि नपुसक वेद, देव गति के बिना तीन गति, चार जाति, औदारिक शरीर, पांच संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह सहनन, तीन अनुपूर्वी, अप्रशस्त व्याय गति, आतप उद्योत, स्थावर आदि चार, दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र का जघन्य अंतर एक समय, जहां उसके प्रतिपक्षी बनती है मिथ्या तो में उसके लिए वो एक समय, उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्व कोटि, कुछ कम एक पूर्व कोटि क्योंकि एक ही भाव में उसने सम्यक तो प्राप्त किया और फिर मिथ्यात्व में आया है। ये तीन पल्ले नहीं ले सकते, वहां ये प्रकृति बनती नहीं, इसलिए देवगति को ऊपर लिया था ना हमने, एक समय से अंतर्मूर्त अंतर देखा था, और यहाँ ये सभी को कुछ कम पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर लेना है। चार आयु का तिरियंचों के ओघ समान है। चार आयु का हमने देखा तीन आयु के लिए कितना मिनिमम अंतर्मूर्त लिया था और मैक्सिमम वन थर्ड पूर्व कोटि कुछ कम, और तिरियंच आयु के लिए ये पंचेंद्रिय तिरियंच है, हाँ पंचेंद्रिय तिरियंच है ना हमारी, तो उसमें तिरियंच आयु का मिनिमम और मैक्सिमम, इसमें वो क्षुद्र वो इसके भी ले सकते हैं, पंचेंद्रिय इन जनरल है, पंचेंद्रिय पर्याप्त के लिए हम अंतर्मूर्त कहेंगे, अंत में बांधा अंतर्मूर्त की आयु में फिर उसने दोबारा बंद किया इस तरह से, एक अंतर्मूर्त ले सकते उसको। मैक्सिमम तो हमने देखा ना तिरियंच, फिर तिरियंच आयु, हाँ वन वन प्लस वन थर्ड, पंचेंद्रिय तिरियंच रहते हुए तिरियंच आयु बांधे भी ना हजार सागर रहेगा, पंचेंद्रिय की मार्गणा नहीं हमारी, इंद्रिय मार्गणा नहीं हमारी, तिरियंच मार्गणा चल रही है, उसमें पंचेंद्रिय तिरियंच का भेद चल रहा है, अकेले पंचेंद्रियों में आप कहते वो घटित होगा उसकी बात नहीं है। तीन आयु का हमने देखा ना जघन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व को वन थर्ड पूर्व कोटि, तिरियंचों के ओक के समान लिखा है ना, यानी तिरियंच इन जनरल की जो हमने पहले उसके जनरल बात की, फिर तिरियंचों के भेद देखे, तो पूर्व कोटि हमने जो कहा था वो पंचेंद्रियों तिरियंचों की अपेक्षा कहे थे, वहां पर पंचेंद्रिय तिरियंच लब्धि अपर्याप्तकों में। अब ये गुणस्थान एक मिथ्यात्व का ही है, हाँ ध्रुवबंदी का तो अंतर ही नहीं होगा, प्रतिपक्ष का अंतर होगा, पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय जुगुप्सा, औदारिक तेजस कारवां शरीर, वर्ण चतुष, अगुरु लघु उपकांत निर्माण और पांच अंतरायों का अंतर नहीं है। साता असाता वेदनिया, सात नौ कषाय, भय जुगुप्सा ऊपर लिया ना, हाँ और ये प्रतिपक्ष में सात लिया ना, क्योंकि तीन वेद है और चार वो जुगल वाली चार प्रकृतियां, दो गति यानी मनुष्य गति, तिरियंच गति, पंचेंद्रिय तिरियंच लब्धि अपर्याप्त है ना, यानी यहाँ अभी वो अग्नि का एक वायु का एक का संबंध नहीं है, और तिरियंच होने से नारकी का भी संबंध नहीं, तो ये अंतर्मूर्त उसका वो पांच जाति, छह संस्थान, औदारिक अंगोपांग, छह सहन, देखो औदारिक शरीर तो इनके लिए ध्रुव बंदी है, अंगोपांग है वो द्विंद्रियादि के साथ बंधेगा, एक इंद्रिय के साथ नहीं बंधेगा, छह सहनन, दो अनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, दो विहाय गति, त्रसादि दस युगल, ये दस को दस लिया यानी त्रसादि के चार और वो सिरादि के छह, नीच उच्च गोत्र का जघन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त अंतर है, प्रतिपक्षी है सभी उसके लिए, दो आयु का जघन्य तथा उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, अपर्याप्तकों में, अपर्याप्तकों में रहते हुए पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त है, वो कौन सी आयु बांध सकते हैं, आयु या तिरियंच है, तो मनुष्यायु के लिए अंतर में तो एक ही भव के अपकर्ष का दो बर बीच में, दो अपकर्ष के बीच का अंतर लेना है, वो कितना छोटा होगा। और तिर्यंच आयु के लिए लगातार दो अपर्याप्त के भव ले सकते हैं उत्कृष्ट अंतर के लिए। पेज नंबर 86। सभी अपर्याप्त त्रस स्थावरों का इसी प्रकार अंतर समझना चाहिए। विशेषार्थ, सामान्य कथन की अपेक्षा तिर्यंचों का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त तथा उत्कृष्ट से सागरोपम शत पृथकत्व कहा है। खुद्दाबंद की टीका में लिखा है, तिरिखस्स तिरिखे हिंतो निगयस्स, यानी तिर्यंच गति में निकलकर शेषा गतिसु अन्य गतियों में सागरोम सदपुधत्तादो वरी अवट्ठान अभावादो, यानी अन्य तीन गतियों में इससे अधिक काल नहीं रह सकता, उसको तिर्यंच बनेगा ही, यानी वो आयु का बंद करेगा ही करेगा। तिर्यंच जीव के तिर्यंचों में से निकलकर शेष गतियों में सागरोपम शत पृथकत्व काल से ऊपर ठहरने का अभाव है। परंतु ये जो कथन है वो कथन सही है, परंतु यहाँ लागू ही नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें रहते हुए प्रकृतियों के बंध का अंतर देख रहे हैं। अब यहाँ रुकेंगे हम, मनुष्य सामान्य की बात कल देखेंगे। छावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं